الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف آیت نمبر 13 سے 26 تک کریں گے. جی دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن کریم کی اہمیت کو جانا اور ہم نے مختصراً ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے اگر کہف والے غار کے اندر یعنی وہ کس طرح سے وہ لوگ غار میں پناہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی بڑی وہ قربانی دیتے ہیں. یعنی ایمان ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سورت کس طرح سے اہمیت رکھتی ہے دور فتن میں. فتنوں کے دور میں اس سورت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے یہ بھی ہم نے اس سورت میں ابھی تک دیکھا. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں جگہ جگہ پر جہاں آیات ایسی ہیں کہ جو ایک ایک آیت کے اندر سبق ہے, ہمیں ایک ایک آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان کو چلنا ہے اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو لے کر. اتنی رہنمائی اس صورت میں ملتی ہے لیکن انہی کے لیے جو اس کو سمجھ پائیں, جو اس کو دیکھیں کہ یہ صورت کس طرح سے ہمیں جیسے زندگی کے راستے میں نا چلا رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر لوگ اس کو صرف جمعے کے دن پڑھنے کا تو اہتمام کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کا نہیں کرتے. میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر مثلاً ہے کہ کسی بندے کو کہا جائے کہ آپ یہ ریسیپی یاد کر لیجئے تو وہ اس لیے یاد کرائی جائے تاکہ جب آپ پکانے لگے تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو, آپ کوئی چیز مس نہ کر دیں. اگر وہ ریسیپی یاد تو کر لے لیکن پکانا ہی بھول جائے یا پکاتے وقت اس کو یاد ہی نہ رکھے تو کیا فائدہ. اسی طرح آپ اس کو پڑھ بھی لیں, اپنا پڑھنے کا بے شک ثواب اور اس کی برکات ضرور ہیں, لیکن آپ کو رہنمائی پھر کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن رہنمائی دینے کے لیے, یہ قرآن راستہ دکھانے کے لیے. اور راستہ تبھی دکھ سکتا ہے جب ہم سمجھیں کہ راہ ہے کیا. تو ہم نے ابھی تک جو فرسٹ سٹوری اس صورت میں نے آپ کو بتایا تھا چار قصے ہیں, ان میں سے پہلے قصے کی صرف تمہید ابھی پڑھی ہے. اس کا ابھی ڈیٹیل آج ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ قصہ کس طرح سگنیفیکینٹ ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ. بہت ضروری ہے یہ جاننا کیا چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس صورت میں اور کس طرح یہ ہماری حفاظت کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ نور بن جائے گی ہمارے لیے قیامت کے دن بھی, اور یہ اتنا انسان کو نور دے گی اتنا کہ یہاں سے لے کے جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے لے کے مکہ تک حرم تک آپ کو نور ہی نور مل جاتا ہے اگر آپ جمعے کے دن پڑھیں تو. اتنا دجال آئے گا تب تو پڑھنی ہی ہے پہلی 10 آیات, لیکن اس کے علاوہ ہر جمعے کو بھی پڑھنی, کیونکہ صرف فتنہ دجال ایک فتنہ نہیں ہے. ہم سب اس چیز کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم اتنے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں. فتنہ دجال جو آنا ہے وہ تو بہت ایک بڑی چیز ہے. اس سے پہلے جتنے فتنے ہمارے ارد گرد موجود ہیں, جتنے فتنے ہم آج کے دور کے اندر دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. ہر فتنے پہ انسان سوچتا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا, تو مومن سوچے گا اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, اس سے بھی بڑا آ جائے گا. फिर वो सोचेगा इससे बड़ा और क्या हो सकता है, उससे भी बड़ा आ जाएगा। फिर इसी तरह हर फितना अगले से बड़ा होगा, जो पहले गुजर गया ना उससे ज्यादा ही बढ़ के होगा। तो जो आने वाला दौर है वो मजीद फितनों को लेकर आएगा, ऐसे नहीं होगा कि चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि हम कयामत की तरफ मूव कर रहे हैं, तेजी से मूव कर रहे हैं। और जो कयामत से पहले का दौर है वो सिवाय फितनों के उसमें और कुछ नहीं है, और ये आप कयामत की निशानियों में भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम में से हर एक समझे कि ये सूरत हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है। तो आज हम देखते हैं इस सूरत में जो दूसरा हमारा सबक है कि हमें क्या समझाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहनु नकुसु अलैका नबअहुम बिलहक, हम बयान करते हैं, हम बताते हैं आपको इनकी खबर हक के साथ। जहां पर हक का लफ्ज आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची खबर, उसकी तफसील हम आपको बताते हैं। नहीं, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। और अरबिक में जब जुमले की तरकीब बदल जाती है ना, यानी नाउन पहले नहीं आता, पहले फेल आता है, लेकिन अगर नाउन पहले आ जाए, जैसे यहां पे इसम पहले आया, नाउन पहले आया, नाहनु पहले आया, फिर फेल आया, नाकुसु हम बयान करते हैं। तो जब इस तरह तरकीब बदलती है जुमले की तो उसमें इख्तिसास आ जाता है, यानी खास अल्लाह ताला ही जानता है और कोई नहीं जानता, सिवाय उसके और कोई नहीं जानता इन नौजवानों के किस्सों की हकीकत को। इसलिए अगर कोई भी कुछ कहता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि आपको कई बातें अहले किताब से भी मिलेंगी, वो भी टेल ऑफ द सेवन स्लीपर्स ये कहते हैं कि सात सोने वालों का किस्सा उनके अंदर भी मौजूद है, वो आपको कोई बातें बताते हैं, तो अगर वो कुरान से कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है, क्योंकि हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। और ये भी हमें पता चलता है कि यहूद समझते थे ना कि हम जानते हैं, हमें बड़ा इल्म है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेस्ट कर रहे थे कि हम देखते हैं इनको पता है या नहीं। और अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला आपको हक बात बता रहा है, उतनी बातें उनको भी नहीं पता, या उनके पास भी वो सच्चाई और वो हकीकत नहीं है जो अल्लाह ताला आपको बता रहा है। और किसी भी किस्से की खूबी ये होती है कि वो सच्चा हो, उसमें कोई झूठ ना हो, उस वो एलिक्वेंट भी हो, फसाहत भी हो उसमें, और उसमें दूसरे को फायदा भी पहुंच रहा हो। और इस किस्से में ये सारी ही बातें, इसमें फायदा भी है, सबक भी है रहती दुनिया तक आने वालों के लिए, इसमें एब्सोल्यूट सच्चाई है। आप देखें आज कितने ही किस्से हैं, बड़े सबक आमोज होंगे लेकिन खुद ही बनाए हुए हैं, कोई सच्चाई नहीं, कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। आप कहते हैं नहीं नहीं बड़ा सबक मिलता है, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं होती। फिर फसाहत, फसाहत और बलागत इसकी देखें, तो इसमें ये हक के साथ है। और नहनु आया, नहनु तो है हम, जबकि अल्लाह तो एक है। पता है आपको कि कई मिशनरीज जो है इस चीज पे बड़ा काम करते हैं और बड़ा इस चीज को और इस इशू को बनाते हैं कि देखिए आपके तो कुरान में हम लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला आप कहते हैं एक है, तो फिर हम का क्यों लफ्ज आया। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि देखें हम का लफ्ज जब आता है ना तो वो बुजुर्गी को जाहिर करता है, जिसको हम इंग्लिश में भी ये बोलते हैं रॉयल वी या मैजेस्टिक वी। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो हमेशा अपने लिए वी का लफ्ज कहती है, हम का लफ्ज कहती है, मैं का नहीं कहती। तो इसका हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों का ये कलाम है। अच्छा, फिर इन्ना फितिया, तो बेशक वो थे एक फितिया। मैंने आपको जैसे बताया कि हमने इसके बिल्कुल एक थोड़ी सी तमहीद ही देखी है, हम उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लड़के थे, नौजवान लड़के थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो ईमान लाए अपने रब पर, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے تھے, انہوں نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچانا جس ماحول کے اندر ہر طرف شرک تھا, کفر تھا, گمراہی کے اندھیرے تھے. اس میں انہوں نے اللہ پر ایمان کو رکھا, اور یہ چھوٹی سی جماعت تھی اور یوتھ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ میں کوئی خیر نہیں ہوتی, حالانکہ اگر یوتھ اللہ کی طرف آ جائے نا, نوجوان آ جائے, تو وہ کام کر کے دکھاتے ہیں جو بڑے بوڑھے نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جس کو بھی اللہ ہدایت دے دے, یا آگے بھی ہم دیکھیں گے, اللہ تعالی کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے نا, ایک قدم بھی بڑھائے تو اللہ تعالی اس کی طرف 10 قدم آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف جو چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے, ایک قدم آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے. تو یہ جو ایمان ہے نا انسان کا, یہ بھی ایک اس پہ نہیں رہتا, سٹیگنینٹ نہیں ہے, کوئی جامد چیز نہیں ہے, ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے. کہ ہدایت بڑی نا, ہدایت ایمان کے ساتھ بڑھتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی دعا کی تھی نا, ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی, اللہ ہمیں ہمارے معاملے میں روشادہ رہنمائی کر دے, ہدایت دے دے. تو انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی اور ان کی ہدایت بڑھتی گئی. جیسے جیسے انسان کے نیک اعمال بڑھتے ہیں, یاد رکھیں جتنی آپ نیکیاں کریں گے نا آپ کی ہدایت بڑھتی جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ میری بھی ہدایت بڑھا دے, تو نیکیوں میں زور لگانا شروع کر دیں. ایمان بڑھے گا اس سے ہدایت بڑھے گی. اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا انہم آمنوا بربہم, کوئی بھی فرق نہیں پڑنا تھا اس سے ترجمے میں کہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے اپنے رب پر. مر فتیاتن, اس سے اللہ تعالیٰ کی اپریسیشن ان کے لیے سمجھیں کہ دے ور ینگ. اللہ تعالیٰ کو نا جوانی کا عبادت گزار بڑا پسند ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو جوانی میں عبادت کرتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, عمر رسیدہ ہیں, تو آپ اب ہوپ نہ رکھیں, یا آپ گیو اپ کر دیں, یا آپ سوچیں کہ اب کیا فائدہ, میری تو جوانی ایسے گزر گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہدایت دے دی ہے تو شکر ہے اس کا, اس سے پہلے کہ موت آ جاتی. لیکن اسٹل اپریسیشن ان کے لیے ہے زیادہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے لیے اپنے ڈورز بند نہیں کرتا. آپ بوڑھے ہو کے بھی آئیں گے نا تو لوگ آپ کو کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا. آپ بوڑھے ہو کے بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو امبریس کرتا ہے. مگر جو ینگ ایج کے اندر اللہ کی طرف آ جائے نا, جس ایج کے اندر ہم سمجھتے ہیں ابھی تو فن کرنے کے دن ہیں, ابھی تو ہمارے انجوائمنٹ کے دن ہیں, ابھی تو میری زندگی پڑی بھی ہے, کر لیں گے اللہ اللہ, بہت ٹائم پڑا, اس وقت جو پلٹ آئے اپنے رب کی طرف, اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پسند ہے. میں اس لیے اس چیز کو ایمفسائز کرتی ہوں کہ آپ میں جو لوگ ینگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی قدر و قیمت ہے. کسی کو ہوپلیس کرنے کے لیے نہیں کر رہی, اس لیے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کی تعریف کی ہے. پہلے بھی آیا تھا نا فتیہ نمبر 10 آیت, اب پھر آیا فتیہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جوانی کا اللہ کی طرف, جوان کا اللہ کی طرف آنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے. لہذا ہم یوتھ کو ہر وقت بیشنگ نہ کرتے رہیں کہ آپ کسی کام کے نہیں, آپ تو کچھ بھی نہیں, آپ تو یہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں. نہیں, ان کو ابھاریں, ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ایج کتنی پسند ہے اگر وہ اس وقت اللہ کے پاس آتے. देखिए, जब सारी दुनिया आपको ठुकरा दे और एक तरफ बिठा दे, हमेशा मैं आपको ये बात बताती रहती हूँ, जब सारी दुनिया ही आपसे मुंह फेर ले, किसी के पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, बात करने का भी किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए, तब आप कहते हैं और कुछ नहीं, अब अल्लाह से ही लॉ लगा लूँ, अब तो मेरा कोई रह ही नहीं गया। ठीक है, आपने किया, अच्छा किया, वो भी जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, वरना कई तो बूढ़े भी इस तरफ नहीं आते, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो वो इंसान है जिसको सारी दुनिया हाथों हाथ लेती है, अब वो पता है ना, जॉब्स में भी यंग को वो प्रायोरिटी देते हैं, बूढ़ों को नहीं, जो कोई रिटायरमेंट के करीब हो उसको नहीं हायर किया जाता, जितनी आपकी उम्र बढ़ती है तो जॉब पाना मुश्किल हो जाता है, यंग के लिए बहुत आसान होता है, क्यों हाथों हाथ लेते हैं? दुनिया में, दुनिया भी आपका जवानी का पीरियड लेना चाहती है, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि जितने आप इस वक्त एनर्जेटिक हैं, जितने आपके पास इतनी हिम्मत, जोश, वलवला और आगे बढ़ने की उमंग जो यंग में होती है, वो ओल्ड में नहीं होती। तो एक तरफ याद रखिएगा, ये दुनिया आपकी जवानी लेना चाहती है, और एक तरफ अल्लाह ताला अप्रिशिएट करने वाला है आपकी जवानी। किसको अपनी जवानी देंगे? एक अल्लाह आपसे सौदा करना चाहता है और एक दुनिया आपसे सौदा करना चाहती है। ये नहीं कह रही कि दुनिया को छोड़ दें, एक तरफ बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करें, मगर यूथ अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाए, यूथ इस तरफ आए, उनके लिए बड़ा बड़ा अल्लाह के यहाँ अजर है। और जितना अल्लाह ताला कदरदान है ना, जिसका नाम अशकूर है, कदरदान, उतना आपकी इस जवानी की कोई कदर नहीं करेगा। इस जवानी को सारा का सारा भी दे दोगे ना इनके लिए, घुला भी दोगे, सख्त मेहनत कर करके अपना पसीना नचोड़ दोगे इनके लिए ना, तब भी ये आपकी कदर नहीं करेंगे। चंद टके ही दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, मगर जो अल्लाह ताला देगा ना, उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते आप। तो अपनी जवानियां दें अल्लाह को। कई लोग जब उनको इतना दुख होता है कि कुरान की तरफ बुलाते हैं ना, तो उनके रवैये ऐसे होते हैं कि यानी वो अपने जुबाने हाल से कह रहे होते हैं, मुंह से शायद ना भी बोलें, बस तो मुंह से भी कह देते हैं, लेकिन वो अपने जुबाने हाल से बोल रहे होते हैं कि अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, अभी हमारी जवानी है ना, तो बीमारी और बहुत सारी काम है, आप हमें किन चक्करों में डाल रहे हैं, अभी हम एनर्जेटिक है, अभी हमें बड़ा कुछ और करना है, अभी कहाँ हम इसमें पड़ जाएं, कहाँ हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, नहीं, ये भी तो फितिया थे ना। तो वो जो ईमान लाए अपने रब की ऊपर और अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी, इससे पता चलता है हिदायत अल्लाह के हाथ में, ये आगे भी आएगा, अल्लाह चाहे तो किसी की हिदायत बढ़ा दे, चाहे तो घटा दे, इरादा अल्लाह का है। लेकिन जब इंसान इरादा कर लेता कि मैंने जम जाना है दीन पे, अल्लाह ताला फिर उसकी रहनुमाई करता है, उसको गाइड करता है। हिदायत क्या है? गाइडेंस, अल्लाह ताला गाइड करता है। देखिए, असहाबे काव को थोड़ी पता था हमने किधर जाना है, हम क्या करें, हम किधर रहेंगे, हम कौन से गार में जाएं, अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी, अल्लाह ने दिखाया ना, इस दुनिया में भी अल्लाह रहनुमाई करता है और आखिरत में भी इसका अजर देगा। तो हिदायत के लिए हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए, हिदायत उतनी मिलेगी जितनी आपके अंदर तड़प है, जितनी आप चाहते हैं, जितनी आप इसके लिए कोशिश करते हैं। जाहिर है, जब इंसान किसी चीज के लिए को बहुत चाहता है ना, तो उसके लिए कोशिश भी करता है, जाहिर है, ऐसे तो नहीं होता मेरी चाहत बहुत है, वो तो झूठ बात होती है, मेरी चाहत बहुत है, बस अल्लाह ही नहीं करता। कुछ लोग जैसे कह देते हैं, हम तो बहुत चाहते हैं लेकिन बस अल्लाह जब चाहेगा तो फिर ही होगा, हमारी क्या फर्क पड़ता है, हम बस दुआ करें जी आप, इसका मतलब आपकी चाहत नहीं है ना, आपकी चाहत नहीं है, अगर चाहत होगी ना तो अल्लाह ताला जरूर दरवाजे खोलेगा। देखिए, याद रखिए कि आपको चाहत दुनिया की हो, कोई पता नहीं आपको मिल सकती है या नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने जितना लिख दिया उतनी ही मिलेगी, मगर हिदायत जितनी आप इसके लिए कोशिश करेंगे, जितनी आप इसके लिए तड़प रखेंगे, अल्लाह ताला देगा। وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، कितनी प्यारी आयत है। रबतना अला कुलूबिहिम इद काम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनका दिल बांध दिया जब वो खड़े हुए। उनका दिल बांध दिया मतलब क्या, उनको मजबूत कर दिया, उनको जमा दिया, ठीक है, उनको जमा दिया। उनकी हिदायत अल्लाह ने बढ़ा दी थी ना, तो उनको अल्लाह ने फिर उनके दिल को भी बांध दिया। तो पहली चीज तो यही हो गई ना उनके लिए, जब हिदायत आती है तो दिल जम जाता है, बंद जाता है। अच्छा एक बात और समझ ले, इब्नुल कय्यम फरमाते हैं कि हर दिन इंसान बढ़ रहा होता है, या तो अल्लाह से करीब हो रहा होता है या उससे दूर हो रहा होता है। हर दिन आप मूव कर रहे हैं, हर दिन मूवमेंट है, हरकत है, आप बढ़ रहे हैं या तो अल्लाह ताला की तरफ को या उससे दूर। हमें भी देखना चाहिए कि हम बढ़ रहे हैं उसकी जानिब या उससे दूर, ठीक है। तो वो लोग जो थे उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ कदम बढ़ाया था, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे छोड़ नहीं देता। याद रखिए अल्लाह नहीं छोड़ता। ये आप दुनिया वाला मामला ना ना समझे, यहाँ पे तो जब इंसान मुसीबत में आता है ना, तो किसी ने क्या खूब बात कही, उसने कहा जब मुसीबत आती है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह ताला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला दुनिया वालों की तरह नहीं है, ये आपके अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं। जब किसी इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो ढूंढने से भी नहीं कोई मिलता, कहीं गायब ही हो जाते हैं। आपके पास सब अच्छा चल रहा है, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, पैसा आपके पास है, बहुत लोग आपके घर जमा हो जाएंगे। बात तो तब है कि आपके ऊपर खुदा ना हंसता कोई मुश्किल आए, तो तब आपके साथ कितने खड़े होते हैं ये बताइए। लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला नहीं। जिस वक्त इंसान उसकी तरफ बढ़ता है और उसको थाम लेता है ना, तो वो मुश्किल वक्त में थाम लेता है, वो मुश्किल वक्त में इंसान को मजबूत कर देता है। तो रबत कहते हैं स्ट्रॉन्ग कर देने को, असल में गिरा लगाने को कहते हैं। गिरा जब आप लगाते हैं तो चीज मजबूत हो जाती है ना। तो आपने दो चीजों में गिरा लगाई, अब वो आप खींच के देखते हैं वो मजबूत हो गई। तो दिल को बांध देना, आपको पता है कुराने पाक में ये लफ्ज और भी कई जगह आता है, आपने पढ़ा होगा बदर में, सूरह अनफाल में है ना, वाली यार बिताला कुलूबी को, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को बांध दिया। जो सहाबा कराम उस वक्त उनके दिल उड़ रहे थे कि ये क्या मतलब, इतना बड़ा लश्कर हम इतने कम क्या होगा। सूरह कसस में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल उड़ रहा था, बच्चे को हाय इसमें डाल दिया दरिया के अंदर, अब होगा क्या। तो अल्लाह ताला दिल बांध देता है। ये दिल ना अल्लाह की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे दिलों को फेर दे। आप खुद सोचें कि वो ऐसे लड़के थे, सुभान अल्लाह, आसान बात नहीं है। देखिए ये रियलिटी है, ये हम ऐसी कहानियां नहीं पढ़ रहे, दिस हैपन्ड। और आप कोई मूवी देख लेते ना, तो आप कितना दिल के ऊपर असर हो जाता है, और वो तो झूठी बातें होती हैं। ये सोचें कि कुछ लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, मे बी टीनेजर्स हैं, अपने घरों से निकल गए, उनके पीछे यानी उनको डेथ सेंटेंस, मौत का फैसला उनके लिए हो चुका है, और अब वो निकले हैं घर से, उनको ये कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या होगा क्या नहीं। कितना दिल डरता है ना, कितना दिल परेशान होता है। और अभी तो यहाँ पर जिस वक्त के पता चला है, इस आयत के अंदर तो हमें ये पता चल रहा है कि जब ये पता चला ना कि ये तो हमारे दीन के ऊपर ही नहीं है, ये तो कुछ और ही मानते हैं, तो लोग वहां से बादशाह तक पहुंच गई, उसने कहा मेरे पास उनको हाजिर करो। उस जमाने में बादशाह जो फैसला कर देता था वही कोर्ट होती थी, समझ लें वो जज भी वही है, वो जो फैसला कर देगा वही होगा। तो अब बादशाह की अदालत में इज कामू, जब वो खड़े हो गए, नॉट ओनली कि फिजिकली खड़े होकर, फिजिकली तो खड़े हुए ही बादशाह की कोर्ट में जाके, मगर उन्होंने स्टैंड ले लिया अपनी कौम के मुकाबले में। बादशाह का भी वही दीन, कौम का भी वही दीन, घर वालों का भी वही दीन, फ्रेंड्स का भी वही दीन, जितना सर्कल है सबका एक ही दीन, सब ही शिर्क पे हैं, पर इन्होंने स्टैंड ले लिया। इज काम तो तब अल्लाह ताला ने, ये देखिए यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, कि जब वो खड़े हुए तब अल्लाह ने उनका दिल बांध दिया, मगर दिल का बांधना पहले मेंशन किया गया है और खड़े होना बाद में किया गया है। पता चलता है कि अल्लाह ताला की कितनी शाने करीमी है ना, कि उसने दिल को बांध दिया उनके, मगर उस वक्त बांधा था जब उन्होंने स्टैंड लिया। मैंने आपको क्या बताया कि आप अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं तब अल्लाह ताला आपकी तरफ कदम बढ़ाता है, समझ आई? तो इनिशिएटिव आपको लेना है, आपको दिखाना है, फिर अल्लाह पकड़ता है ना, फिर अल्लाह ताला थाम लेता है। आप तो कुछ करने को तैयार ना हो तो अल्लाह ताला कैसे आपको जमाएगा, क्यों जमाएगा? तो उन्होंने जब स्टैंड लिया अपनी पूरी कौम के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हम नहीं इसकी इबादत करते। अब वो जैसे आप ये थोड़ी सी बात को समझे कि ये कोई पैगंबर नहीं है, ठीक है? आपने इससे पहले एक पैगंबर का किस्सा पढ़ा है जो बादशाह वक्त के सामने खड़े हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मगर वो अल्लाह के खलील थे, उनके पास वही आती थी, वो अल्लाह के नबी थे। ये कौन है? ये कोई नबी नहीं है, ये आम पब्लिक में से है, आम लड़के हैं। सोचें आप जरा, हम जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं हाय वो उनके तो वो तो नबी थे, हम तो कोई आम। आप इस कुरान के अंदर देखिए, आपको वो मिसालें भी मिलती हैं जो आम इंसानों की हैं, जो हमारे जैसे सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग थे, और वो भी कोई ऐसे नहीं थे वो बेचारे फकीर कभी गरीब थे तो अब उनके पास क्या था, नहीं, बहुत रिच थे, सब लग्जरीज उनके पास थी, उनके पास भी आसाइशें थी जो उस जमाने की थी, जो उस वक्त की बड़ी चीजें समझी जाती थी, वो सारी नियमतें उनके पास थी। तो उस वक्त में जब उन्होंने स्टैंड लिया तो अल्लाह ने उनके दिल को बांधा, ठीक है? तो जब दौरे फितन होगा ना तो इंसान कितना घबराएगा बताएं? आज भी हमारे दिल घबराते हैं, हमारे दिल उड़ते हैं, अल्लाह हम कैसे फितनों का मुकाबला करें, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल को ही बांधता है जो स्टैंड लेता है। और जो पानी के बहाव पे बढ़ता चला जाता है ना, कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, चलो चलो सारे यही कर रहे हैं, चलो चलो तुम भी इधर ही चलते रहो, अगेंस्ट द वॉटर स्विम करना बहुत मुश्किल है। जिधर को पानी का बहाव उधर को जाना तो आसान है ना, आधा तो पानी ही आपको पुश कर देता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस तरफ को चलना बड़ा आसान है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो ही आपको पुश करके आगे चलाते रहते हैं। बात तो तब है कि कोई इंसान अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी कौम, अपने लोग, अगर वो अल्लाह ताला के खिलाफ चल रहे हैं, उसकी नाफरमानी में चल रहे हैं, शिर्क में चल रहे हैं, बिदतों में चल रहे हैं, उस वक्त कोई इंसान स्टैंड ले लेता है इस सारे के खिलाफ, बात तो तब बनती है। आज तो हमें इतना भी मुश्किल लगता है कि हम कहते हैं हाय मैंने हिजाब ले लिया, मेरे तो पूरी फैमिली में कोई हिजाब नहीं लेता, बड़ा मुश्किल है, बड़ा बड़ा ही मुश्किल है। हम कहते हैं किस दिन कोई आ जाए कि हम ये उतार ही फेंगे। हम कहते हैं अच्छा म्यूजिक के खिलाफ हमने स्टेप ले लिया कि हम ऐसी गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे जहाँ पे म्यूजिक हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं है और मैं ही सिर्फ हूं। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं उनकी, जो हमारे मुसलमान घराने हैं उनके अंदर भी हमारे लिए स्टैंड लेना मुश्किल होता है। कहाँ ये कि इन्होंने तो दीन ही बदल दिया था, सिर्फ अपनी फैमिली के से अलग नहीं हुए थे बल्कि पूरी की पूरी कौम में ये अजनबी थे, और जबकि इनके पास कोई नबी नहीं है, ये बात जहन में रखें, इनके पास कोई उस्ताद नहीं है, इनके पास कोई स्कॉलर नहीं है, इनके पास कोई मोटिवेशन के लिए नहीं खड़ा हुआ। हमें तो लोग कहते हैं कि वे मोटिवेट करें हमें, पहले हम मोटिवेट होंगे ऐसी कुछ बातें करें कि हम मोटिवेट हो जाएं, जरा हमारा जोश आए, कोई बलबल आए, तो फिर हम कुछ करेंगे। इनको कौन समझाने वाला है? और हो सकता है दौरे फितन के अंदर जब दज्जाल आए, तो हो सकता है, ये बहुत चांस है कि आपका जो सर्कल है, यहाँ खुदा ना खास्ता आपकी जो फैमिली है वो भी उसके पीछे चल पड़े। और हो सकता है कि आप बिल्कुल ही अकेले हो, तो क्या करेंगे तब? छोड़ देंगे सारा कुछ? मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो अकेली हूं, मैं तो नहीं अकेली चल सकती ना, वो दुनिया को भी तो देखना होता है। नहीं। उस वक्त अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना होता है ताकि मिल के आगे चले, और वो चंद एक ही होंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। दौरे दज्जाल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि अक्सरियत ही अल्लाह वाली बन जाए, यही तो फितना है। और फितना समझ ही नहीं आना उसका, इंसान को लगेगा ये सही है, वो सही नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को भी फितना दज्जाल से महफूज रखे। तो ये मुश्किल वक्त जब आता है, उस वक्त जो स्टैंड लेता है उसके दिल को अल्लाह ताला फिर थाम लेता है, मजबूत कर देता है उसको। जैसे मैंने आपको ये मिसालें कुरान से दी है ना, वो भी बहुत मुश्किल टाइम थे, बहुत हार्ड टाइम थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने दिल को बांध दिया। ए अल्लाह हमारे दिलों को भी बांध देना, हर फितने के दौर में हमारे दिलों को बांध देना। और दिल को बांधने से क्या होता है कि इंसान का दिल जम जाता है, फिर दीन से हटता नहीं है, फिर वो डाउट्स में नहीं पड़ता, फिर वो ये दीन के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें नहीं करता कि आए तो फिर हम तो इतना दीन के पर चल रहे थे, हमें अल्लाह ने कैसे छोड़ दिया, अल्लाह तू कहाँ है, हम तो ईमान वाले थे, अब जी हमारे साथ क्या हो गया ये, या ये कि जी कयामत आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो हम नहीं कर सकते ये, या ये तो नहीं आज के इस दौर के अंदर एप्लीकेबल, हम क्या करें फिर, क्या जिंदा ना रहे हम, ये नहीं फिर इंसान कहता। दिल का रबत जब हो जाता है ना, इंसान दलेर हो जाता है, फिर डरता नहीं है हक बात कहने से, फिर मुखालफत को जितनी भी हो उसको बर्दाश्त करता और चलता रहता है अल्लाह के रास्ते में। फिर लोगों की बातें उसको ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं करती, पर वो रेजिस्ट करता है, गिर नहीं जाता, फिर वो स्ट्रगल करता है, आगे बढ़ता है, घबराता नहीं है, इस्तकामत पा लेता है अल्लाह के रास्ते पे, नेकियों पे जम जाता है और जमा रहता है जब तक वो दुनिया से चला ना जाए। फिर वो जल्दबाज नहीं होता कि हाय क्यों नहीं मदद आ रही, हाय क्यों नहीं ऐसा हो रहा, हाय क्यों नहीं हमारे मसले हल हो रहे, क्यों हमारे पर ये आफत आ गई है, हाय क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों हालात ऐसे हो रहे हैं। शायद दुनिया में आप देखें जुल्म इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा, और शामत ज्यादा मुसलमानों की आ रही है। उस वक्त किसी को डाउट ना होने पाए कि पता नहीं हम सही भी हैं कि नहीं, अगर हम सही होते तो अल्लाह हमारी मदद ना करता, नहीं। तो ये जब रबत आ जाता है ना, जब इंसान स्टैंड लेता है, तो तब ही अल्लाह दिल को बांध देता, फर्म कर देता, फिर इंसान को यकीन होता है कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी, जुल्म की ये रात जरूर खत्म होगी। फिर इंसान उल्टे सीधे काम नहीं करता कि तकरीबकारी शुरू कर दे, वायलेंस पे उतर आए, या फिर बिल्कुल ही मायूस होके बैठ जाए। क्योंकि तो आप देखें यूथ ज्यादातर वो फिर वायलेंस पे उतर आती है। इन लड़कों ने ये नहीं किया कि कहीं जाके बम बांध के वो खुदकुश का हमले करना शुरू कर दें, कहीं जाके कुछ और शुरू कर दें कि ये तो लोग हमारे जैसे हैं ही नहीं, तो हम तो इनको आज खत्म ही कर देंगे। देखें ये चीजें हमें सबक देती हैं, फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाना जरूरी है। तो हम कैसे दिलों को चाहते हैं, अगर हम के हमारे दिलों को भी अल्लाह ताला बांध दे तो क्या करें हम? सबसे पहले दुआएं करें, और रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दे दी। फिर वो भी दुआ, अल्लाह हब्बिब इलैना ईमान, अल्लाह ईमान को हमारे लिए महबूब कर दे, महबूब कर दे, कितनी प्यारी दुआ है ना। वज़य्यिन वज़य्यिनहू फी कुलूबिना, अल्लाह इसको हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे। फिर आपको क्लास में बैठना बोरियत का सबब नहीं लगेगा, क्लास लंबी नहीं लगेगी, दिल लगेगा, जब अल्लाह दिल बांध देगा। फिर इसी तरह जो नेकी भी आप कर रहे हैं ना, उस पे जम जाए, जम के करें, बार बार नहीं कि कभी कुछ शुरू कर दिया फिर अब तो मेरे से हो नहीं रहा, अब कोई आया और कोर्स शुरू कर दिया, फिर वहां से नहीं हुआ, फिर कहीं और से, जब मुझे पहले पारे से शुरू करेंगे फिर मैं करूंगी, फिर कहीं और से जा। कई लोगों को मैं देखती हूँ वो हर दफा कहीं ना कहीं पहले पारे से ही शुरू कर रहे होते हैं। नहीं, जम जाए, फिर सुन्नतों का इत्तेबा करें। और चौथी चीज ये, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। पांचवी चीज ये कि फितनों के दौर में इतना इतना कुछ होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कौन हक पे है कौन नहीं है, इतना कंफ्यूजन होगी ना, उस वक्त सलफ सालेहीन को फॉलो करना, जो अर्ली जेनरेशन के मुसलमान है ना उनको फॉलो करें, सहाबा और ताबेईन को फॉलो करें, हर राह चलते को फॉलो ना करना शुरू कर दें। जैसे इब्ने अब्बास ने अपने शागिर्दों से फरमाया था कि निजात चाहते हो ना, अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो तुम अपने से पहलों को, अब इब्ने अब्बास किसको फरमा रहे हैं, अपने शागिर्दों को, अपने से पहलों को यानी सहाबा को फॉलो करो, जहां वो रुके वहां रुक जाओ, जो उन्होंने कहा वो कहो, जिससे वो बचे तुम भी बचो। तो ये भी एक काम करने का है कि आप अर्ली जनरेशन को देखें, खुदा के लिए जो नए नए फलसफे लेकर आ जाते हैं, नई नई बातें लेकर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ, के इनको अब नहीं समझ आ रही है जो सहाबा को नहीं आई थी, इनको समझ आ गई वो बातें। इस तरह के बहुत सारे हैं जो बैठ के इस तरह, कभी वो उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर तो कितनी ऐसी वीडियोस मिल गई हैं, कोई कह रहा है ब्रिटिश एम्पायर दज्जाल थी, कोई कह रहा है टीवी दज्जाल है, कोई कह रहा है ये फोन दज्जाल है, कोई कह रहा है क्या नाम है उसका, अमरीका दज्जाल है, कोई कोई कुछ, मतलब बेसरोपा बातें जिनका कोई सर ना पैर। आप सर हमने बता दिया वो एक आदमी होगा, वो कोई हदीसे नहीं पता, हदीसे भी सारी एक तरफ रख दी खुद ही अपनी, कभी किसी के ऊपर चिपका दिया दज्जाल का, कभी किसी के ऊपर चिपका दिया, कभी ये बता दिया ये इमाम महदी है, फलां महदी फलां महदी, फलां हदीस जो है ना ये इसके ऊपर फिट आ रही है, फलां उसके ऊपर फिट आ रही है, खुद ही करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जबकि महदी जब आएंगे ना उनको खुद भी नहीं पता होगा कि मैं ही महदी हूं, या वो पता। तो और अगली बात ये कि सालिहीन की सोबत में खुद को रखें, उनके साथ रहें। ये देखें, ये जैसे इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था, ये आपस में मिलके बैठते थे, मुजाकरा करते थे, अपने जैसे लोग ढूंढे। तो यहां से ये पता चलता है कि देखें इंसान तो थे ना, और इंसान है तो उसके साथ ये सारी चीजें लगी, उनके भी दिल उड़ रहे थे, डर रहे थे, खौफ सताते, क्या यार अभी बुला लिया अब हमारा क्या बनेगा, तो अल्लाह ताला ने इनको मजबूत कर दिया। अब जब ये बादशाह के उसमें पहुंचे, तो बाज कहते हैं कि ये बादशाह के सामने उन्होंने कहा, बाज कहते हैं कि लोगों को उन्होंने कहा, फकालू तो उन्होंने कहा, सबके सब कहने लगे, रब्बुना हमारा रब तो वो है जो रब्बुस समावाती वल अर्द है, जो रब है आसमानों और जमीन का, लन नदवा मिन दूनी ही इलाहन, हम तो हरगिज नहीं बनाएंगे उसके अलावा किसी को इलाह, हम तो किसी और को इलाह नहीं समझते उसके अलावा, रब के अलावा। और फिर उन्होंने देखे कितनी बात के, अगर हमने ऐसा के ये नहीं कहा कि तुम लोग तो ऐसा करते हो, लकद कुलना इजन शता था, अगर हमने उसके अलावा किसी को इलाह बना दिया तो हमने तो बहुत झूठी बात की, तो उनको इंस्टिगेट नहीं कर रहे, उनको वो मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि उनको गुस्से में लाएं कि तुम लोग तो इतनी झूठी बात कर रहे हो और ऐसे कर रहे, नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे ताकि वो समझ जाएं कि वो तो ऐसा कर ही रहे हैं ना, तो ये खड़े हो गए, सोचें आप उस कोर्ट में या लोगों में भी अगर खड़े हो गए तो समझ लें कि ये कहना क्या मतलब रखता था, बगावत, क्योंकि ये दीन सारी पब्लिक का था, सारी कौम का था, और उस वक्त इसी को उनका समझा जाता था, यही उनकी मिल्लत है, आगे आएगी भी बात, लेकिन वहां पे खड़े हो जाना डट जाना कोई आसान बात थोड़ी है। हदीस में आता है जालिम बादशाह के सामने कलमाए हक कहना अफसल जिहाद है, अफसल जिहाद है ये, कि जालिम बादशाह, जालिम हुक्मरान, जालिम हुकूमत हो उसके सामने कलमाए हक बोलना। तो अब ये सोचें कौन से हालात में ये कह रहे हैं, जब सारी दुनिया एक तरफ है अकेले खड़े हैं, और इनके सपोर्ट कोई ऐसी नहीं है कि कोई बादशाह इनकी सपोर्ट में, कोई लोग और इनकी सपोर्ट में, अब सारे क्या कहेंगे कि बागी हो गए, जाहिर है अब लोग तमाशा देख रहे हैं अब क्या होता है, अब बादशाह क्या फैसला देता है कि इनके लिए मौत की सजा है। तो वो जो सुभान अल्लाह, जो नर्वस हुए हुए थे, जो हिले हुए थे, जो खौफजदा थे, अल्लाह ने कैसे दिल बांध दिया कि इतने दलेर हो गए वही लोग कि हम तो नहीं किसी और को इला समझते। इला कौन होता है? इला वही होता है ना जिसकी आप इबादत करते हैं, जो आपके लिए जिंदगी में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है। उन्होंने देखें, एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करें कि तौहीदे रबूबियत से तौहीदे अलूहियत को साबित किया। रब तो सभी मानते हैं कि रब, रब मतलब क्या कि मालिक है, खालिक है, चलाने वाला है, पालने वाला है, आसमानों जमीन का सब कहते हैं। आप किसी किसी से भी पूछ रहे, मुशरिक से भी पूछ रहे ना, वो भी कहता है हाँ एक को एक ही है, वो एक है जिसको सारा कुछ चलाता है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त इबादत करने लगते हैं फिर उसके अंदर शरीक कर लेते हैं, और मुशरिकी ने मक्का भी यही करते थे। ये कुरान में तौहीद रबूबियत से जब ये कहा जाता है ना, रब है आसमानों जमीन का, ये तो तुम भी मानते हो ना, फिर इसके अलावा क्यों किसी की पूजा करते हो? यानी फिर इलाह भी तो उसी को मानो ना, जब उसको रब मानते हैं तो इलाह भी मानो। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, सब कहते हैं देना उसी ने है जी, हमें पैदा उसी ने किया है जी, वो फिर उसके बाद जाकर कहीं और माथे टेकना शुरू कर देते, ठीक है। उन्होंने जब पूछा ना कि तुम हमारे इलाहों को क्यों नहीं पूछते, तुम्हारे को क्यों नहीं कुछ समझते, तो उन्होंने कहा हमारा रब वो है, रब यानी हमारा भी वो रब है और आसमानों जमीन का भी वो रब है, और उसके अलावा कोई रब नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। समझ आई बात? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम रब मानने में नहीं है, वो इसको नहीं एम्फोसाइज करते वो रब है तो हम उसके अलावा किसी को रब नहीं समझते, रब तो सारे ही उसको ही समझते, हम उसके अलावा किसी को इलाह नहीं मानते। बात समझ आई है या नहीं? तो ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे समझने का है, क्योंकि आप तबलीग करने बाज दफा जाते हैं तो आप ये लोगों को यही कन्विंस करते रहते हैं कि जी वो रब है, वो रब है, भाई वो तो रब मानते ही हैं उसको, आप उनको इस तरफ लेकर आए कि इबादत नहीं किसी और की करनी। और यहाँ पे नदउ का मतलब इबादत ही है, नाबुदु माना है कि हम इबादत करेंगे, हम पुकारना क्या है, तो दुआ जो है वो मुखल इबादा है, इबादत ही तो है दुआ, बल्कि उसका जिस्ट है क्या। तो अब ये बात वो कह के शिर्क से की नफी कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो रब होता है वो ही इलाह होता है, वो ही इबादत के लायक होता है। जाहिर है जिसने, जो मालिक है, जिसने पैदा किया, वो उसकी पूजा करनी चाहिए ना, उसकी इबादत करनी चाहिए। नहीं, कोई मुश्किल बात तो नहीं। सूरह बकरा में हम सबसे पहली जो बात अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को कही है, हुक्म दिया है, वो क्या है, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। लोगों, सिर्फ ईमान वालों नहीं, सारी इंसानियत, तुम तो उसकी क्यों नहीं इबादत करते जिसने तुम्हें पैदा किया, ठीक है। फला तजालु लिल्लाहि अंदादा भी कहा गया ना, उसके साथ किसी को शरीक करो, तुम्हें पैदा उसने किया है तो तुम उसके साथ, पैदा करने में तो कोई शरीक नहीं हुआ था, क्या किसी और ने भी पैदा किया? नहीं। तो फिर ये जुल्म क्यों करते हो कि इबादत के वक्त तुम दूसरों को पुकारना शुरू कर देते हो? इबादत का जब वक्त आता है तो, जब इबादत ही है यानी दुआ का वक्त आता है तो अजमेर शरीफ तुम्हें याद आ जाता है, गौसे आजम कहना शुरू कर देते हो, दाता साहब की तरफ भागते हो। तो हर हफ्ते सूरह कहफ पढ़ते हो, और ये नहीं समझ आती कि जो आसमानों जमीन को पैदा करने वाला है मैं उसको क्यों नहीं पुकारती। और याद रखें एक बात, ये सूरत में भी आएगा, जिसको दुनिया में पुकारते हो ना, जिससे दुआएं मांगते हो, तो कयामत के दिन भी उसी को ही पुकारोगे, फिर वो फिर काम नहीं आने। जाहिर है यहाँ पे उसको पुकारते तो वहां पे भी जाके उनको ही कहेंगे ना कि आप जी गौसे आजम आप हमारी यहाँ पे भी मदद करें, दुनिया में भी तो उसको पुकारते थे, वहां पे जाके एकदम तौहीद वाले नहीं बन जाओगे कि उठते ही तौहीद का आपको याद आ गया, ये नहीं होगा। तुम यहां पे देखो कि तुम किसको पुकारते हो इस दुनिया में, नोट करें आप, जब भी कोई मुश्किल आती है मुंह से क्या निकलता है, दाता साहब, हाँ, या अब्दुल कादिर जीलानी, क्या निकलता है? तो इस सूरत के एंड की तरफ जाके आप देखेंगे कि वहां पे उनको कहा जाएगा पुकारो ना उनको जिनको तुम पुकारते थे। वो वहां पे फिर मिलेंगे भी नहीं। हाँ, जो यहाँ पे भी अल्लाह अल्लाह को पुकारता है वो वहां पे भी उसी को पुकारेगा। और अल्लाह तो हय और कयूम है, और अल्लाह ताला वो जात है जो कभी छोड़ता नहीं। अगर आपने उसको थामा है ना, वो कभी छोड़ेगा नहीं, ये यकीन रखें। क्यों नहीं उसको थाम लेते? उन सहारों को क्यों पकड़ते हो जो खुद कमजोर है, जो खुद अल्लाह की रहमत के मोहताज है, जो खुद बंदे हैं? उसको क्यों नहीं थामते जो रब है? तौहीद का ये दर्स है कि हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारते, और हमने तो पता नहीं पुकारने के लिए किस किस को बनाया हुआ अपनी जिंदगी में। अगर हमने किसी और को पुकारा तो हम तो बहुत झूठी बात कह रहे हैं फिर। हा उलाई कौम नतखजु मिन दूनी आलिहा, ये लोग हमारी कौम इन्होंने बना ली है, और अब हो सकता है अब ये कौम की तरफ को मुतवज्जे हुए, या फिर ये भी उलमा कहते हैं कि शायद एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं, यानी आप आपस के अंदर बात कर रहे हैं, या कौम को कह रहे हैं कि ये हमारी कौम है जिसने बना लिया, या डिस्कस आपस में करने लगे हैं कि ये हमारी कौम ने क्या कर लिया, इन्होंने और इलाह बना लिए। अल्लाह को जो एक इलाह है उसको छोड़ के लाउला याथूना अलैहिम बिसुल्तान बय्यिन, क्यों नहीं ये लेकर आते हैं इसके लिए कोई वाज़े दलील, कोई सुल्तान? मैंने आपको बताया कि ऐसी हुज्जत जो गालिब आ जाए और बय्यिन, बिल्कुल वाज़े वाज़े दलील क्यों नहीं लाते? इसलिए कि बगैर क्लियर प्रूफ के आप कैसे कह सकते हैं कि कोई और भी इलाह है, कोई और मदद करता है? क्या अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से कह के गए थे कि मुझे ही मानना और मुझे ही पुकारा करना, या अजमेर कह के गए थे, या वो हजरत अली हजवेरी जिनको दाता साहब कह के वो कहते ही थे कि मैं दाता हूँ, लोगों मैं दाता हूँ, मुझसे मांगा करना? कौन सी हदीस है ये? कहाँ पे लिखा हुआ है ये? इनके जो वहां पे मिजारों पे बैठे हैं, उन्होंने इतनी घड़ घड़ के कहानियां बनाई हुई हैं, इतनी घड़ घड़ के कहानियां बनाई हैं, उनके मुंह की बातें, कुरान एक बात कह रहा है जो हक है सच है, उसको छोड़ के उनकी कहानियों पे हमें बड़ा बिलीफ है कि जी वो फलाना यहाँ पे आया, उसकी मुराद पूरी हो गई, ये हो गया, उसके ख्वाब में आ गए, उसके ये कह दिया। ये इनकी मुंह की बातें हैं, कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। इसीलिए तो कुरान बार बार कहता है लाओ कोई दलील, कोई लाओ दलील के। और दलील क्या होती है? क्लियर प्रूफ क्या है? या तो किसी किताब में लिखा हुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई, ये नहीं कि मैंने खुद बैठ के घर में लिख लिया, वो कोई चीज नहीं होती, वो दलील नहीं होती। या किसी नबी ने बताया, फिर बात समझ आती है। कौन से नबी ने ये बात बताई है? कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ? जब नहीं है तो फिर सुनी सुनाई, बस ना कुछ देखा ना कुछ पता है, बस सुनी सुनाई बातों को ही आगे उसके ऊपर बिलीव करके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई वाज़े दलील होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या दलील है कि एक अल्लाह है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं? हमारे पास क्या दलील है? हमारे पास दलील है कुरान, हमारे पास दलील है हमारे नबी की बात हदीस जो महफूज है, और इसकी भी हमारे पास दलील है कि ये कुरान महफूज है और उसका एक हर्फ भी बदला नहीं, इसकी भी हमारे पास दलील है। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी बात नहीं होती। किसी के ऊपर भी यकीन करने से पहले बहुत जरूरी है कि वो देखें कि इसके पास क्या प्रूफ है। और फितना दज्जाल में भी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत कुछ दिखाएगा, बड़े शोबदे होंगे उसके पास, इसको जिंदा कर रहा है, उधर से खजाने निकाल रहा है। ऐसा आजकल कई ये जो शोबदेबाज होते हैं ना, कई लोगों ने बताया अभी उसके उनके प्रोग्राम भी बने हुए हैं, वो जादूगर से हैं, क्या करते हैं पता नहीं, आदमी को लिटा लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर वो जिंदा भी खड़ा हो जाता है। फिर किसी ने मेरे से पूछा, देखें जी हमने तो ऐसा खुद देखा जाके, देखें ऐसा देखना भी गलत है, जादू हराम है, और ये देखना भी, वो पता नहीं क्या करते हैं, आंखों के ऊपर कुछ कर देते हैं या क्या है कि इंसान को ऐसे नजर आता है, लेकिन दज्जाल तो वाकई जिंदा करेगा, वाकई जिंदा करेगा, तो क्या फिर मान लेंगे उसको खुदा? तो कहते कि अब आप इसके बारे में बताएं। अब क्या इसके बारे में बताएं, क्योंकि कयामत के करीब तो ऐसे फितने आएंगे, हमें क्या जरूरत है? जब हमारे हमारे ईमान है कि एक अल्लाह ही जिंदा करने वाला है, क्यों आप इन जादूगरों को जाकर देख रहे हैं? तो इसलिए उसके पास कोई क्लियर प्रूफ नहीं होगा, ना वो कुरान से साबित कर सकता होगा, ना किसी पैगंबर ने बताया। ठीक है, वो कहेगा कि मैं जिंदा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं खुदा हूं। ठीक है, तो कोई बात मानने के लिए जरूरी है कि सुल्तान सुल्ताने बय्यन हो किसी के पास। और यहां से हमने ये भी देखा कि उन्होंने कितने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हमारा अकीदा क्या है। वो डरे नहीं ये बात कहने से पहले। अच्छा, जब हम अपने अकीदे के ऊपर होते हैं ना फर्म, तो पता नहीं हम क्यों डरते हैं। कभी हमें ये डर होता है कि पता नहीं हाय लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कभी हमें ये डर होता है हमें आउटकास्ट ना कर दें, हम अपनी महफिलों में से नहीं निकाल दें, या फिर पता नहीं हम स्टैंड आउट ना करने लगे कि लोगों में प्रोमिनेंट हो जाएं, फिर क्या बातें करेंगे, फिर क्या होगा, फिर कहीं ये ना कोई कह दे वो ना कह दे। नहीं, इस बात जो आपका बिलीफ है उसको आप बता सकते हैं कि ये मेरा बिलीफ है, किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे। है क्या, उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि इनको किस पसंद नहीं आएगा तो हम ना कहेंगे। तो और ये एक बात देखें, यहाँ पे बड़ी ही प्यारी बात है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हा उलाई कौमु ना हमारी कौम। हालांकि वो तो काफिर थे, फिर क्यों उन्होंने कहा हमारी कौम? इसलिए कि आप उनके कुफर से बेजार हो सकते हैं, उनके जुल्म से बेजार हो सकते हैं, उससे नफरत कर सकते हैं, उनके स्टांस को बुरा समझ सकते हैं, मगर एंड ऑफ द डे ये मत भूलें कि जिन लोगों में से हैं वो आपकी कौम है, वो आपका मुल्क है, वो आपके दिल में उनके लिए खैर ख्वाही होनी चाहिए। ये नहीं कि उनसे ही नफरत शुरू कर दें, ठीक है? तो वो फिर भी कौमू ना ही कहते हैं, ये हमारी कौम, ये नहीं कि ये काफिर लोग, ये देखो जरा ये क्या कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि खैर ख्वाही हमेशा रहनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देख लें और दूसरे नबियों को भी देख लें, तो वो क्या कहते हैं, या कौमी, क्या वो उनके भाई थे या उनके कोई बहुत चहीते थे या उनके क्या थे? हाँ, उनके खानदान कबीले वाले, उनके एक ही खून के रखने वाले लोग थे, लेकिन कौमी इसलिए कहते थे कि उनको उनसे खैरख्वाही थी कि ये मेरी कौम है। जब तक आप इस तरह का दर्द नहीं रखेंगे, क्या किसी को तबलीग करेंगे? जब नफरतें ही पाली होंगी, ये तो ऐसे, ये तो ये कुफर से जरूर नफरत करें लेकिन लोगों से नहीं। फमन अजलमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कदीबा, कौन उससे बड़ा जालिम हो सकता है जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे? ये बात तो बार बार कुरान में आती है, तकरीबन 9 दफा कुरान में आई भी, कि कितना बड़ा जुल्म है अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, बड़ा गुनाह है। जैसे हम सूरह आराफ में भी पढ़ के आए हैं ना कि वहां पे अल्लाह ताला ने हराम चीजों की लिस्ट बनाई, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल्फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन। और उसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअन तकूलु अल्लाहि मा ला तअलमून, कि तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें करो कि जो तुम नहीं जानते, और यानी झूठ बांध दो, अपनी तरफ से बातें लगा दो अल्लाह ताला के ऊपर। और सबसे झूठी बात जानते हैं क्या है? शिर्क। सबसे झूठी बात है कि कोई जो अल्लाह के ऊपर लगाता है, हदीसें घड़ना, खुद ही बना बना के कह देना ये हदीस है, कोई भी किसी की सेइंग बड़ी अच्छी लगी उसको ताकि लोगों में पॉपुलर हो जाए। चलो हमारी तो नीयत भाई अच्छी ही है ना, वो कह देते हैं वो जिसने, हर रमजान से पहले आ रहा होता है, जिसने रमजान की पता नहीं इतला दी लोगों को, वो जहन्नुम से पता नहीं आजाद हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। ना कोई ऐसी हदीस, ना कोई ऐसी वो जो व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर जितनी जगहों पे हम फैला सकते हैं बस आगे आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो ये हदीस घड़ना भी क्या है? अल्लाह पे झूठ, कैसे अल्लाह पे झूठ? तो आप सल्लम की हदीस है, लेकिन जब हमें पता है कि आप सल्लम अपनी अपनी तौर पे कुछ नहीं कहते थे, वो ही कहते थे जो अल्लाह तला ने फरमाया। तो जब हम कहते हैं ये आप सल्लम ने फरमाया, तो इसका मतलब हमने कहा ये अल्लाह तला ने उनको फरमाया, तो कितना बड़ा ये झूठ है, अल्लाह ताला ने तो ऐसी बात नहीं की। इसीलिए उलमा इतने मोहतात होते हैं ना फतवा देने में, ऐसी बात करने में बहुत मोहतात होते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती, कितनी बड़ी बात है अल्लाह के ऊपर झूठ बांध देना। इसीलिए हमें ये नहीं, कभी भी, पहले भी मैंने कहा था, ये कभी नहीं कहना चाहिए हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मैं बताती हूँ। जब तक आपको 110% नहीं श्योर हो जाए, अब बिल्कुल 100% आपको पता है कि यही है, तो तब आप बात करें, लेकिन वैसे ही ना कहते जाए। ठीक है, तो ये दो आयात हमें क्या सिखाती हैं कि जम जाओ अल्लाह के रास्ते पे, जम जाओ अल्लाह के रास्ते पे, और अल्लाह ताला के मुतल्लिक ऐसी कोई बात ना करो जो कि आपको इल्म नहीं है, झूठ ना बांधो अल्लाह के ऊपर, अपने ओपिनियन मत रखो, ठीक है। वा इज़े अतज़ल्तुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाह, और जब इज़े अतज़ल्तुमूहुम, याद करो कि जब वो अलग हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, अजल कहते हैं अलग होने को, तो जब उन्होंने, जब तुमने छोड़ दिया उनको, यानी जब असहाबे कहफ ने उनको छोड़ दिया, अपनी कौम को, उनसे अलग हो गए, वमा याबुदूना इल्लल्लाह, और जिनकी वो इबादत कर रहे हैं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह की, और नहीं वो इबादत करते मगर अल्लाह की, ये भी एक है, वो नहीं इबादत करते अल्लाह की, और जिनकी वो इबादत कर रहे हैं सिवाय अल्लाह के, उनको भी छोड़ दिया। अगर हम पीछे से जोड़ें तो क्या मतलब है, जब उन्होंने छोड़ दिया उनको यानी अपनी कौम को, वमा याबुदून, और जिनकी वो इबादत करते थे उनको भी छोड़ दिया सिवाय अल्लाह के सिवा सबको ही छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा आप उसी तरह से भी इसको देखें, वाइज़े तज़ल्तुमुहुम, ये बड़ी प्यारी एक बात इसके अंदर आती है इस वाली तफसीर में, कि जब उन्होंने, जब तुमने उनको छोड़ दिया, और फिर ये ब्रैकेट करें वमा याबुदून इल्लल्लाह, ये जुमला मोतरिजा है। जुमला मोतरिजा क्या होता है कि बात करते करते कोई बीच में बात, जैसे मैं आपको लेक्चर देते देते कहूँ कि ये बात हो रही थी, और आप अपनी आवाज़ चेक करें कि आवाज़ ठीक आ रही है आपको, ये जुमला मोतरिजा है, यानी बीच में कोई और बात कर दी, फिर उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू शुरू कर दूँ, कि अब वो उसका हिस्सा नहीं है मगर बीच में अब मैंने कोई बात की, तो ये बीच में अल्लाह ताला ने बात की, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कि जब वो अलग हो गए उनको, और वो नहीं किसी की भी इबादत करते थे सिवाय अल्लाह के, जब तुम अलग हो गए उनसे और वो किसी की नहीं इबादत करते थे सिवाय अल्लाह के, ये माना है, यानी अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत और कितनी उनकी ये अदा प्यारी लगी, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये उनके बारे में बताते बताते कि तुमने छोड़ दिया उनको और वो नहीं इबादत करते थे सिवाय अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते थे, ठीक है, और फिर दोबारा बात को कंटिन्यू किया। तो ये बड़ा ही खूबसूरत मकाम है इस सूरत में, क्योंकि अल्लाह ताला की एप्रिसिएशन है इसके अंदर उनके लिए, कि वो तो सिर्फ अल्लाह वाले थे, अलग तुम हुए उनसे और वो सिर्फ अल्लाह वाले थे, क्योंकि ऐसे लोग कम ही होते हैं जो तूफानों में खड़े हो जाएं, जो मुखालफतों में खड़े हो जाएं, जो सख्त हालात में और फितने के हालात में, ये फितने के हालात थे ना, जो उनकी कौम एक पूरी तरफ जा रही थी और वो अलग हुए, और याद रखिए फितना दज्जाल में भी लोग चौक दर चौक दज्जाल के पीछे जा रहे होंगे, जिसको देखो वो उसी तरफ होगा, लोग भी आपको इसी तरफ चलने को कह रहे होंगे, उस वक्त खुद को उनसे काट के अलग हो जाना, ये बहुत मुश्किल भी बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सारी की सारी कौम में खानदान और औरतें तो ज्यादा ही दज्जाल के पीछे होंगी, हदीस से पता चलता है, अक्सरियत उसके पीछे होगी, दुनिया सारी उसके पीछे होगी, काफिर तो सारे होंगे ही होंगे, यहूदी भी होंगे और भी जितने भी काफिर हैं सब उसके पीछे होंगे, मुसलमानों की भी कसीर तादाद होगी, तो अब आप सोचें, जो यही सोच लें कि जो उसके सामने ही जाएगा वो उसका भी ईमान चला जाएगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती, ईमान वाला अपने आप को समझता होगा मैं ईमान पे हूं, लेकिन उसके सामने जाएगा तो उसका भी ईमान चला जाएगा, अल्लाह अकबर। तो इतने फितने के दौर में भी वो इबादत कर रहे, वो नहीं इबादत करते सिवाय अल्लाह के, फाउ इलल कहफ, तो पनाह ले लो, पनाह लो, फाउ अमर है, पनाह लो कहफ में, अब अगर अल्लाह ताला की बात है तो अल्लाह ताला उनको कोई वही तो नहीं कर रहा, मगर इसको कहते हैं इल्हाम, जैसे अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा के दिल में इल्हाम डाला था ना, दिल में ख्याल डाला था, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जब रहनुमाई होती है तो बाज दफा दिल में ख्याल डाल दिया जाता है आम लोगों के, जो कोई पैगंबर नहीं होते, तो वो उनके दिल में ये ख्याल डाला गया कि जाओ पना लो अल कहफ में। अल कहफ से पता चलता है वो खास गार जिसमें ये जाके बैठ के रखीम पढ़ा करते थे, इबादत किया करते थे, पहले भी जाते थे ना इस बार में, तो चलो वहां चलो। अच्छा, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती व युहयी लकुम मिन अमरिकुम मिरफका। वो फैला देगा, अल्लाह ताला फैला देगा, तुम्हारा रब जो है वो फैला देगा तुम्हारे लिए अपनी रहमत में से, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में सहूलत का सामान, आसानी तुम्हारे लिए कर देगा। यही उनकी दुआ भी थी ना, यही उनकी दुआ थी जब वो कहफ में एंटर हो रहे थे, तो उन्होंने यही तो कहा था। ये देखिए आयत 10 में, रबना आती ना मिल्ला दुनका रहमतन, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए फैला देगा, गार तो तंग है मगर रहमत फैली होगी, और जहां पे अल्लाह की रहमत आ जाए फिर वो फिर तंग जगह भी कुशादा हो जाती है इंसान के लिए, और अल्लाह की रहमत ना हो तो बड़े बड़े घरों में भी रह के लोग तंग हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हें आसानी का तुम्हारे लिए मामला कर देगा, सहूलत का मामला कर देगा। इतनी सहूलत होगी कि तंग जगह भी तुम्हारे लिए सहूलत वाली बन जाएगी। और देखें अल्लाह ताला ने उनके लिए ये एक जगह छुपने की भी कर दी, पनाह लेने की कर दी, अल्लाह ताला तुम्हारा हाल भी दुरुस्त कर देगा। अल्लाह के लिए जब कोई कुछ छोड़ता है ना, तो अल्लाह ताला, मैंने आपको बताया, उसको छोड़ता नहीं है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तो अपना घर छोड़ा था, अल्लाह ताला ने फिर क्या कुछ नहीं उनको दिया, आज तक हम उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र खैर दुनिया में हर उम्मत में। मगर जब उन्होंने एक कुर्बानी दी थी तब, ये भी जब इद कामू, जब ये खड़े हो गए तब ये सब कुछ हुआ। हम चाहते हैं हम कुछ ना छोड़े, हम कुछ ना करें, बस गैब से हमारे लिए मदद आती रहे, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, हमने नहीं कुछ करना, ऐसे नहीं होता। वो पहुंचे, पनाह ली, इसका मतलब है कि अब उनके घरों के अंदर उनके लिए पनाह नहीं रह गई थी, सेफ्टी नहीं थी, वो भागे हैं वहां से। पनाह तो वही लेता है ना जो भागता है कहीं से, हिफाजत के लिए पनाह ली जाती है ना। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि ये उनमें से जो बड़ा था उसने कहा, ये बात उसने कही जब वो उन्होंने जब छोड़ दिया तुमने उनको, अमा याबुदूना फाबू, तो उसने कहा, बड़े वाले ने कहा, बस पना लो गार की तरफ, चलो चलो उस गार की तरफ, तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहमत करेगा और तुम्हारा मामले में आसानी कर देगा। मिरफक, मैंने आपको बताया, रिफ्क से है, रफीक भी इसी से होता है, ठीक है, तकिया भी इसको कहते हैं। तो अब है तो गार, और कहा गया कि अल्लाह ताला इसमें आसानी कर देगा, है गार और रहमतें फैला देगा, बजाहिर तो कहीं नहीं नजर आ रहा, मगर ये क्या है, ये अल्लाह ताला से जो हुस्ने जन रखता है ना, ये बदतरीन हालात है, अपेरेंटली कुछ भी ऐसा नहीं है, अपेरेंटली कुछ ऐसे गार है जैसे दुनिया के गार होते हैं, कोई स्पेशल सोने का तो नहीं बना हुआ, या उसमें कोई बिस्तरे तो नहीं बिछे हुए। अब हालात क्या है, कौम पीछे पड़ी हुई है, कत्ल करने के दर पे है, लोग पता नहीं इनकी तलाश में, हो सकता है निकल भी चुके होंगे, किधर भाग गए, इनको पकड़ के लेकर आओ। और वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फैला देगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा रब अपनी रहमत में से तुम्हारे लिए सहूलत का सामान कर देगा। और बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान के ऊपर जब मुश्किल हालात हो तब भी वो अल्लाह से हुस्ने जन रखे, ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा बड़े लोगों का काम ये होता है। थोड़ दिले जो लोग होते हैं ना, बस जरा सी बात के ऊपर ये रो धो के, हाय अब तो कुछ नहीं होना, अब बस गया सब कुछ खत्म, अब क्या हो सकता है, अब हम तो इतने देर से मांग रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं, कोई बीमारी आ जाए, कोई घर में प्रॉब्लम आ जाए, तो फौरन मायूसी की बातें। लेकिन हुस्ने जन कितना है ना, तो हमें भी समझना चाहिए। जब बीमारी आए तो तब भी दिल में यकीन हो कि अल्लाह है ना, वो अशाफी है। जिंदगी में कुछ खराबी आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो अल्लाह है ना, वो कामों को संवारने वाला है। गुनाह हो जाए तो अल्लाह है ना, जो माफी को कबूल करने वाला है। मुखालफत आए तो अल्लाह है ना, जो अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। वो मेरा रब मेरे साथ है ना, वो मेरा हादी है, अल्हादी अल्लाह है। इस यकीन के साथ इंसान आगे बढ़े, अल्लाह करेगा ना, वो निकालेगा मुझे इन हालात से। अब क्या इनको क्या नजर आ रहा था, मुझे बताएंगे आप? साहबे कहाफ को क्या नजर आता रहा था वार में, जो वो कह रहे हैं अल्लाह अपनी रहमत निछावर कर देगा, फैला देगा, जामत भी ये नहीं, फैला देगा अपनी रहमत में से, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है, उसमें से जरा भी किसी को मिल जाए तो बहुत है। तो मुझे आप बता सकते हैं क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, बजाहिर कुछ भी नहीं। अगर बात होती है दिल के यकीन की, बात होती है आप कैसा देखते हैं अल्लाह ताला को। आपसे सलाम ने फरमाना, अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता है, जैसा आप गुमान करें। और आप कहेंगे नहीं, अल्लाह ने तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, अल्लाह ने तो मेरे साथ यही करना है, मेरे साथ तो हमेशा ही उल्टा होता है, मेरे से तो कभी भी नहीं मेरा साथ देगा अल्लाह ताला, कभी भी नहीं मुझे माफ करेगा। तो ठीक है, फिर जाओ ऐसे ही। तो अब वो छुपते छुपाते आ रहे हैं, मोस्ट वांटेड हैं, कोर्ट में अभी उनकी पेशी हुई है, अभी वो पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के वहां से निकले हैं, और कह क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर, या अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमाए, ऐसा यकीन अता फरमाए यार रब। तो अल्लाह ताला ने वाकई उनके लिए ईज कर दी ना फिर। और देखें कि यंशुर और युहयी, ये दोनों फेल है ना, और इनके आखिर में जज़्म आ रही है। असल में फेल के आखिर में जज़्म नहीं आती, पेश आती होती है, मगर जब ये जज़्म आ जाती है ना, तो उसके अंदर एक माना बन जाता है यकीन का, कि उनको यकीन था। अब ये यकीन कौन देख रहा है, हजारों साल गुजर गए, उनके दिलों में कौन झांक के देख रहा है। ये एंड की आयत में आपको ये बात समझ आएगी कि उस वक्त भी अल्लाह ही है ना जो देखने वाला है, कितना अच्छा वो देखने वाला है। उसको पता है कि ये यकीन है इनके अंदर, और उसने कुरान में बता दिया कि उनको यकीन था कि अल्लाह रहमत को फैला देगा हमारे लिए। उन्होंने यही दुआ भी की, अल्लाह हमें जरूर हमारे लिए सहूलत का इंतजाम करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पे तो कोई भी सबब नहीं है, कैसे करेगा कैसे करेगा, हमें तो नहीं समझ आती कैसे। उससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, जब उसने मुश्किल से निकालना है ना, तो इंसान को समझ भी नहीं आती वो कैसे निकाल देता। हम अपने दिमाग को लड़ाते हैं, वो कैसे करेगा, वो कैसे रास्ता निकालेगा। कितना जबरदस्त होप है ना इसके अंदर कि वो उसका काम है, उसका काम वो जाने उसने कैसे करना। हमें क्या पता, हमारी तो अकल ही बहुत छोटी। अल्लाह अकबर। और वो फिर निकालता है, तो वो दिन के जो पहला हिस्सा है, कहते हैं जैसे इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अवल नहार जो था ना, दिन का शुरू का हिस्सा, उसके अंदर वो गार में दाखिल हुए थे, और उन्होंने भी दुआ भी की। अब देखें उसके बाद सो गए, सोने से पहले क्या बातें हो रही हैं, अल्लाह की रहमत की बातें हैं, उसके ऊपर यकीन की बात, उसके साथ सोए हैं और उसके साथ अच्छे गुमान के साथ सोए हैं, दुआ मांग के सोए हैं। आप हम भी सोते हैं, जिस वक्त हम सोने लगते हैं, हम भी इससे सबक सीखें कि हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए। क्योंकि जब रात आती है ना, तो फिकरात हमें घेर लेती हैं, और हम मेरे दिमाग के ऊपर इतनी चीजें जो सारा दिन से भी नहीं आई होती, अब फारिग हो गया जहन, करवटें बदलते, इधर उधर फिक्रें, परेशानी के अंदर नींद ही नहीं आती। ठीक है, इन ये सो गए, अल्लाह ने सुला दिया, थपकी दे के सुलाया अल्लाह ताला ने, पिछली सबक में हमने पढ़ा है ना, थपकी थी। हालांकि देखें, घर वालों को छोड़ के आए, उनको खुदाफिज भी नहीं कहने का मौका मिला। तो यहां से यहां तक भी जाना हो तो हम घर वालों से गले मिलते हैं, फिर रोते हैं, फिर कई दफा वेव करते हैं, फिर जाते जाते भी देखते जाते हैं पीछे मुड़ मुड़ के, फिर वहां पहुंच के भी कहते हैं बड़े याद आ रहे, हाय अम्मा, हाय फलां। ये तो कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे, इनको फिक्र है तो अपने ईमान की फिक्र है असल में। ये नहीं है कि हम उनको छोड़ आए, आए अब क्या होगा, पता नहीं कब उनको देखेंगे, आए हमने तो मुलाकात भी नहीं की। नहीं, और अल्लाह ने सुला दिया। अब ये आगे अल्लाह ताला का मामला है, वो ये दुआ करके सो गए, ये अल्लाह तेरी सुपुर्द है, अब तेरा मामला है, तूने कैसे आसानी करनी है तुझे ही पता है, तूने कैसे रहमत भेजनी है वो तू जाने, तेरे काम है ना। तो अल्लाह ताला के पर छोड़ा तो करें ना, और यकीन के साथ छोड़े, या सारे काम हमने खुद ही करने हैं तो फिर उसको क्या इला माना, अपने क्या रब माना, तो सारी कायनात चला रहा है, तो ये मेरा तो काम बहुत ही छोटा सा है। अल्लाह अकबर। मैं आपको ही नहीं कहती, मैं अपने आप को भी कहती हूँ, अल्लाह हमें, या अल्लाह हमारे ईमान को ऐसा कर दे, सभी कमजोर ईमान वाले हैं। अब ये एक और बात यहाँ पे समझने की है, वाइज़े तज़ल्तुमू, उलमा ने इसको भी एक, यानी एक इसके ऊपर भी पॉइंट रेज किया है कि वो अलग हो गए थे अपनी कम्युनिटी से, तो क्या इस तरह सही है अलग होना, या कब हमें पता चले? क्योंकि एक सवाल मेरे से काफी साल पहले किसी ने किया था कि इतने फितने हैं हमारे इर्द गिर्द, तो आप बताएं कि क्या हमारा टाइम आ गया है कि हम अब अलग हो जाएं? तो याद रखिए, उलमा कहते हैं कि आप जहां पे रह रहे हैं, चाहे कितने भी फितने, अगर आपके जरिए इंसानियत को फायदा पहुंचने का इम्कान है, आप उनको तबलीग कर रहे हैं, उनको बास कर रहे हैं, चाहे जुबानी चाहे अपने अमल से, तो आपको वहीं रहना चाहिए। जिस वक्त आपको लगता है ना कि मेरा अपना दीन ईमान खतरे में पड़ गया, मुझे डर है कि मेरा अपना ईमान जाता रहेगा, या वो लोग आपकी जान के दर पे हो गए, जैसे आज चाइना में हालात है, तब आप वहां से फिर हिजरत करें। आप देखिए ना, आप सरसर मक्का में रहे थे कि नहीं रहे थे, वहां पर सारा माहौल काफरों का ही था, मुखालफत ही थी, तो तब तक हिजरत नहीं की जब वो जान के दर पे हो गए, और आप तो जिंदा ही नहीं रहने देना का सवाल हो सकता था कोई, तबलीग का रास्ता तो बाद की बात है, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो तबलीग क्या करेंगे, तो जिंदगी का ही रास्ता बंद करने का उनका प्रोग्राम हो गया, तब आप सल्लम ने हिजरत की थी। तो इसलिए ये चीज को समझना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि इंसान जिस सोसाइटी में रह रहा, नहीं जहां पे बहुत ये है तो हम यहां से भाग जाए, भाग जाएंगे तो फिर उन लोगों को कौन बताएगा। तो एक दाई के लिए जरूरी है कि वो वहां रहकर अपना काम करे, ठीक है। और आप ये भी देखें कि एक हिजरत वो होती है जो फिजिकल होती है, और एक हिजरत होती है जो जहनी होती है। पहले जहनी हिजरत होती है, यानी दिल से जो आप हिजरत कर लेते हैं, अब आप उन लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ जॉब करते हैं, लेकिन आप दिली तौर पे उनके साथ नहीं है, आपका उनके साथ कोई दिल का ताल्लुक नहीं, ना आपको उनकी बातें पसंद है, ना उनके काम पसंद है, लेकिन आप मजबूर हैं वहां पे बैठे में, अब आप उनको बताते हैं जो जितनी भी हद तक अपने अमल से, अपने बात से तबलीग करते हैं, पहले ये होती है। फिर जब एक्सट्रीम ही माहौल या आपके हालात हो जाएं ऐसे एक्सट्रीम के, ना अब आप तबलीग कर सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो गया, फिर आप फिजिकली भी अलग हो जाते हैं, जैसे ये लड़के हुए, समझ आए? तो जब ऐसे हालात हो जाएं, जैसे कि अब दज्जाल जब आएगा, कि आप सरसर ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान वाले को अपने दीन को बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा और लोगों से अलग होना पड़ेगा, तो एक दौर ऐसा वाकई आएगा, क्योंकि उस वक्त में ईमान इसके सिवा किसी चीज से नहीं बच सकता, फिर ईमान चला जाएगा अगर वहीं पे रहते रहे। तब तो लाजिम है कि इंसान हिजरत करे। लेकिन अगर ऐसे हालात नहीं है तो आप लोगों को छोड़ के अलग थलग हो जाएं, जिन्हें मैं नहीं इनके अंदर रहती क्योंकि ये नहीं मुझे पसंद और वो करते हैं तो वो नहीं मुझे पसंद है। असल बात तो यही है ना कि उनके अंदर रह के तबलीग करें, वो तो मुश्किल लगता है, वो करनी नहीं है। तो आसान ये लगता है कि चलो जाके किसी जंगल में बैठ जाए, वहां पे बस अल्लाह अल्लाह करते रहे, या चलो आओ किसी ऐसे ही माहौल में चले जो हमारा मुआफिक हो। तो हाँ, कोई इतना ही कमजोर है, वो किसी तरह भी उसका ईमान ही जाने का खतरा है, वो किसी तरह पे भी नहीं वहां पे उस अपने ईमान को बचा सकता, तो ठीक है फिर वो चला जाए। मगर हदीस में आता है कि वो आदमी जो लोगों से मिलता जुलता है और उनके साथ सबर करता है, वो बेहतर है उससे जो लोगों से मिलता जुलता भी नहीं है और उनके साथ सबर भी नहीं करता। बहुत वुसत है इसके माने में, इस हदीस में। बाज हम लोगों से तंग आ जाते हैं, कहते हैं हम बिल्कुल अलग होके बैठ जाते हैं, मैंने नहीं किसी से मिलना जुलना, मैं नहीं किसी से बात करती, मैं, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं। लोग तकलीफ पहुंचाएंगे, लोग उल्टे सीधे भी काम करते हैं, आप उनको कहेंगे वो फिर आपके मुखालिफ होंगे, फिर वो आपको बातें सुनाएंगे। अब ये बातें हमसे सुनी नहीं जाती, हमें तो मसला पड़ जाता है, तो फिर आप, हम कहते हैं तो आइसोलेट ही हो जाए। आइसोलेशन कोई सलूशन नहीं है। आप अल्लाह अल्लाह अपने करते रहें, आपका सारा माहौल जो है वो किस तरफ को जाने लगा, मैं और आप कहेंगे नहीं जी मैं तो किसी से मिलती जुलती नहीं, ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ और मैं बस अपने ही बैठी हूँ। इससे बेहतर है वो जो लोगों से मिलता जुलता है, उनके साथ सबर करता है, उनको समझाता है, उनको बताता है, उनको तबलीग करता है और उनकी मुखालफत पे सबर करता है, क्योंकि मुखालफत तो आएगी, लोग आपको बातें सुनाएंगे, लोग आपको बुरा भरा भी कहेंगे, उस वक्त सबर करना है, वो हार तो नहीं पहना देने ना उन्होंने। तो इस चीज को समझना चाहिए कि हर एक हालात ऐसे नहीं है कि हम सामान उठाएं और बस हम यहां से हिजरत करके उधर चले जाऊं। आज तो खैर दुनिया के अंदर जहां जहां तक तो इंटरनेट पहुंच चुका है, वहां पर सभी चीजें पहुंच चुकी हैं एक जैसा ही, जिसको कहते हैं वाकई दुनिया, कहा करते थे पहले जमाने के अंदर लोग के दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी, अब बन चुकी है, अब बन चुकी है, जो कहीं पे भी दुनिया के अंदर है वही दूसरी जगह हो रहा है। कोई आपको ऐसे कैमोफ्लाज करके बैठने नहीं कहीं मिलेगा कि आप अपने आप को छुपा के कहीं बैठ जाए, वो पता ही ना चले, सब चीजें आपके घर तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में सलूशन ये नहीं है कि हम बस अब जाएं, और हम इस वक्त वो हालात नहीं है, हाँ आएंगे हालात लेकिन अभी नहीं है, अभी अब फिर भी मौके हैं, फिर भी आपके पास चांसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, आप उठ सकते हैं, आप तबलीग कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि वो हमें गालियां देंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है तो हम सोचते हैं कि अब मौके बंद हो गए, क्योंकि लोग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, चाहे वो सुनने को तैयार नहीं, आप कहते जाए, आप बताते जाए, आप हिकमत से काम ले और आप सब्र करें उसके ऊपर। लेकिन हमारी अना जब बहुत बड़ी होती है ना, और हमसे ये बातें अपनी जात पे नहीं सुनी जाती, तो तब हम ये सोचते बस हम हिजरत ही कर लेते, अब कोई और सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो ये इज़ैत मुंह तब होगा जब ऐसे हालात हो जाए, वरना आप स्पिरिचुअली दिली तौर पर तो उनसे अलग होंगे, फिजिकली नहीं, फिजिकली आप उनको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, अपने किरदार से, अगर आपसे बोल के नहीं होता तो अपने अमल से, अमल से भी एक तबलीग होती है, अपने अमल से दिखाते रहेंगे। ठीक है, और ये भी हमें देखें, ये बात पता चल गई अच्छी तरह कि यहां पर उन्होंने जो बात की है ना कि और जिनकी वो इबादत करते थे, अगर उस चीज को लिया जाए कि वमा याबुदूना इल्लल्लाह, उनको भी छोड़ दिया, और जिनकी वो इबादत करते थे उनको भी छोड़ दिया सिवाय अल्लाह के, और पीछे भी हमने बात की कि उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं किसी और को पुकारते, तो हमारा जो अकीदा है ना वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम कुफर का और ताहूत का और अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत की जाती जब तक उनका इनकार ना करें। तब तक हमारा, अगर हम ये कह देते हाँ अल्लाह इलाह है, बस इतना ही कह देते हैं, वो एक खुदा है, हम उसको पूजते हैं, तो आपको निगेट करना जरूरी है, इनकार करना जरूरी है कि कोई और नहीं है इलाह मगर अल्लाह, वमा याबुदूना इल्लल्लाह, ये जरूरी है, नहीं वो इबादत करते। पहले सब के लिए नफी, सूरह काफिरून में क्या है, यही तो सूरते हैं सूरह काफिरून और सूरह इखलास। हम फजर की दो सुन्नतों में पढ़नी सुन्नत है और फिर वितर में भी पढ़नी। काफिरून में आप इनकार करते हैं सब का, ठीक है, ला आबुदू मा ताबुदून कहते हैं, ठीक है। और इखलास में आप कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, उस वक्त आप अल्लाह को एक मानते हैं, इला एक अकेला मानते हैं। तो नेगेशन है और उसके बाद आप ये अपना बिलीफ, ये अपनी अफर्मेशन देते हैं, कंफर्म करते हैं कि अल्लाह इला अकेला है, ठीक है। तो दिन की सुबह की शुरू की भी नमाज में और आखिर की भी नमाज में आपको निगेट भी करते हैं और आप एक दूसरों को निगेट करते हैं और एक अल्लाह को सूरह इखलास में आप एक इलाह मानते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये एक बात भी हमें ये समझ आती है कि कभी भी आप दुआ करने में सुस्ती ना करें, कभी भी, और दुआ को यकीन के साथ करें, कभी भी उसके अंदर डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने दुआ की है तो आप वो यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह ताला रहमत करेगा हमारे ऊपर और हमें जरूर हमारे लिए सहूलत भी करेगा, ठीक है। तो ये हमें बातें समझ आई हैं, इससे आगे देखते हैं। वतरशमसावरकहदी वहीदरबरीदात वहुम फी फजवते मिन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम देखते हो, अब आप सलम तो नहीं देख रहे थे लेकिन मतलब एक इस बात को समझते, या जो कुरान पढ़ रहा है तो तुम देखते हो कि यानी एक बताया गया ना, जैसे अलम तरह कैफा बताया जाता है, तुम देखते हो, यानी आप कोई बात समझ आ जाए कि अल्लाह ताला ने कैसे सुभान अल्लाह सूरज को भी उनके काम में लगा दिया, कि सूरज डायरेक्टली उनके ऊपर नहीं पड़ता था, जब तुलू होता था तो बच जाता था उनके गार से, इनडायरेक्ट उनके गार के उसमें जाती थी धूप, लेकिन ऐसे नहीं जैसे बचता हुआ जा रहा है राइट साइड से। वजा गरबत तकरीदुम जाते शिमाल, और जब गुरूब होने लगता था तो कतरा जाता था बाएं जानेब से। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि सूरज जैसी मखलूक को भी जब अल्लाह ने रहमत करनी हो ना, फिर कोई बंदा कहता है ना कैसे आएगी, क्या होगा, कोई, अब मुझे तो कोई सबब नहीं नजर आ रहा, मुझे तो कोई चांस नहीं नजर आता। जब रब ने करना हो तो उसके लिए क्या मुश्किल है, सारी कायनात उसके कुन के इंतजार में, सूरज उनके गार से कतरा के चला जाता ना, उनके जिस्मों के ऊपर डायरेक्टली सूरज नहीं पड़ता था कि उनको जला ही देता 300 साल में, तो इसलिए वो कतरा के जाता था, लेकिन ये था कि इनडायरेक्ट लाइट भी जाती थी, अगर डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ती तो हो सकता है कोई राह चलता देख लेता। बाज कहते हैं कि सूरज गार में सिर्फ दिन के शुरू में आता था, तो वहां फ्रेश एयर हो जाती है, सूरज जहां जाता है वहां पे मोल्ड नहीं होता, कीड़े वगैरह इन्फेस्टेशन वगैरह नहीं होती। तो ये भी उलमा ने बताया कि इस तरह से देखा जाए तो उनके गार का जो मुंह था वो नॉर्थ ईस्ट में की डायरेक्शन में था और वो फजवा में थे, वो बिल्कुल उसके मुंह पे नहीं लेटे हुए थे, बिल्कुल सामने नहीं, अंदर जाके, वो जवा कुशादा जगह को कहते हैं ना, तो वो अंदर जाके, इसका मतलब गार बड़ा सारा था, अंदर में जाके लेटे हुए थे, बिल्कुल अंदर जाके, ठीक है। तो ये उनकी यानी पोजीशनिंग थी, अल्लाह ताला ने इस तरह से उनको भी हिदायत दी। देखिए ये जो ये हिदायत अल्लाह की तरफ से है ना, कि ये वाला गार जिसके अंदर इतनी, ऐसे लगता है कि जैसे सुभान अल्लाह कस्टम मेड गार है ना, कह के बनवाया जाता है ना जैसे, तो उस तरह से वो गार है कि हर चीज इतनी मुआफिक थी, तो वो इतना अरसा वहां सोए रहे, सारी तरफ से ही उनके लिए यानी सहूलत। अब आप देखें जो घर भी नॉर्थ फेसिंग होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली इस तरह से धूप कम ही जाती है, तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसी जगह का बंदोबस्त किया, सूरज को भी उनकी फेवर में लगा लिया, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह ताला कोई जिसको फेवर देना चाहता है, अपनी रहमत करना चाहता है, सूरज हो चाहे चांद हो चाहे और भी, अभी हम देखेंगे आगे किस किस को अल्लाह ने नहीं काम पे लगा दिया। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि देखो सूरज भी उनसे कतरा के जाता था, इसलिए कि अगर उनके ऊपर पड़ता तो उनको जला देता। 300 साल अल्लाह ने डीप स्लीप में ऐसा कर दिया। एकदम देखें आप ना, रोशनी एकदम मुंह पे भी पड़े तो इंसान जाग जाता है। तो सोचें 300 साल सोना कोई आसान बात थोड़ी है। तो तुम विजुअलाइज कर सकते हो, तुम इमेजिन कर सकते हो, दरा का मतलब है तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसे थे, कि कैसे सूरज उनके ऊपर पड़ता था और फिर वो फजवा में लेटे हुए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह सुला देना इतने अरसे। तो अल्लाह ताला ने सारा इंतजाम कर दिया, और उनको क्या पता कि सूरज ऐसे आना चाहिए, हम वो वाला कार चूज करें जिसमें ऐसे होना चाहिए। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये क्या निशानी है, इसके अंदर क्या निशानी है, इतनी बेशुमार निशानियां निशानियों में से। एक निशानी तो यही कि अल्लाह ताला ने देखे कैसे जवान लड़कों को ऐसे ही ईमान की ताकत दे दी, इतना ही ईमान दे दिया कि सब कुछ ही छोड़ के चल पड़े। हाँ जवान थे, जवानों का तो काम ही होता है रुझान इस तरह, और फिर इतना ही ईमान, और उनको समझा भी दिया कि इधर पहुंचना है तुमने, ये निशानी है ना। फिर ये भी निशानी है कि अल्लाह ताला ने कैसे उनको मौत नहीं दी है, सुलाया है 300 साल और कोई उनमें चेंज नहीं आया। ये भी निशानी है ना कि अल्लाह ताला ने उनको गार की रहनुमाई की है जो परफेक्ट है उनके लिए, सोने के लिए और उनकी हिफाजत के लिए, कि किसी को वहां तक पहुंचने का मौका ना मिले। ऐसे लगता है जैसे कि कोई हाई राइज के ऊपर कोई बड़ा अपार्टमेंट हो जिसके अंदर हवा भी जाती है। कहते हैं जो ये गार है ना, ये यार कोई कहता है, टर्की के लोग कहते हैं वहां पे है, जॉर्डन वाले कहते हैं वहां है, पैलेस्टाइन सीरिया कितनी जगह, कोई कहता है इराक में है, तो खैर डिफरेंट इसके बारे में है, कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन सा है, वाकई यही है। लेकिन जो भी इस तरह के गार हैं कहते हैं बड़े एयरी हैं, उसमें बड़ी हवा का भी मतलब आना जाना, फ्रेश एयर आती है बड़ा, इस तरह से इस तरह ही उनके ऊपर सूरज आता और जाता है, सुबहान अल्लाह। तो ये मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युदलिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत वाला है। तो वाकई जिसको अल्लाह ताला इतनी जवानी में किसी को चाहे हिदायत देना तो कौन उसको हिदायत से रोक सकता है। और ये भी पता चलता है कि जवानी में भी हिदायत मिल सकती है, ऐसा नहीं कि जवान नहीं। आप ये हमारी क्लास में ऐसे लोग हैं जो जवान हैं, वो अपनी माओ को तबलीग करती हैं कि अम्मी आप ये गलत काम कर रही हैं, ये ना करें, ऐसा ना करें, वैसा ना, माँ ही नहीं सुनती। अब हालांकि माँ जो है वो कितनी ज्यादा तजर्बाकार, कितनी ज्यादा उम्र की होगी, बेटी से ज्यादा डबल उम्र की, माँ को समझ नहीं आती, और जवान है वो माँ को बता रहे हैं, माओ को कह रहे हैं कुरान की तरफ आए। ऐसे भी जवान हैं कि माशाल्लाह लोगों ने बताया हमारे बच्चे हमें आके फजर पे उठाते, माँ बाप बजाय बच्चों को उठाए। अब ऐसे माँ बाप बदकिस्मत है कि उनको ये नहीं समझ आती कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है, इस मामले में कितनी उनकी खुशकिस्मती है कि जिनको अल्लाह ऐसी औलाद दे दे। तो इससे पता चलता है हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपकी एज कितनी है, या आपके पास पैसे कितने हैं, या आपके पास अकल कितनी है। अब कहने को जो जितने ज्यादा उम्र वाले होते हैं, कहने को तो बहुत ज्यादा उनका तजर्बा होता है, आपका तजर्बा कितना है इससे भी नहीं कोई फर्क पड़ता, ये शराइत नहीं है। आप के साथ तो मैंने बताया था आपको कि यूथ थी ज्यादा, नूह अलैहि सलाम के साथ भी बल्कि ये था कि उनकी कौम उनको कहती थी इनके साथ कौन है, ये तो ज्यादा लड़के लड़के से इनके साथ है, तो लड़के लड़को उनके पास क्या अकल है, इनको क्या समझ है। तो इसलिए, और फिर देखे रैकल ने जब पूछा था जो था रोम का बादशाह कैसर रोम, तो उसने पूछा था ना अबू सुफियान से कि ये उनके साथ कौन लोग हैं, तो अबू सुफियान ने कहा कि गरीब है कमजोर लोग हैं, तो इसका मतलब माल से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किस चीज से ताल्लुक है, इसके हिस्से नहीं है। जो बूढ़े होके हिदायत मिलेगी, कई बूढ़ों को भी नहीं मिलती, तो फिर क्या करेंगे आप। तो हिदायत जो है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि अल्लाह हिदायत देने वाला है, ना पैसे ना डिग्रियां ना अकल ना कुर्सी ना पोजीशन ना कोई माल, कोई भी चीज इनमें नहीं काम वाली, कोई आप एक रूल नहीं ये दे सकते। कौन अल्लाह के आगे फरियादे करता है, किसको तलब है, किसको चाहत है, कौन चाहता है हिदायत पाना? और जो जाहिर है जो चाहता होगा वो इसके लिए दुआएं भी करेगा। आप देखिए हमारी वितर की दुआ में जो दुआए कुनूत है उसमें हम कहते हैं अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदीत, अल्लाह मुझे हिदायत दे उनमें से बना दे जिनको तूने हिदायत दी। तो हिदायत मांगने की जरूरत है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत मांग रहे हैं आप। तो हिदायत आपके अंदर कितनी तड़प है, सवाल तो ये है। बास लोग तो इतने आराम से कह देते हैं, हंसी में ही चाहे कह रहे होते हैं, हमें तो पता है हमने जहन्नुम में ही जलना, मुझे तो पता है। यानी इतने आराम से, इसका मतलब दे डोंट केयर, उनको परवाह ही नहीं है। ऐसे इंसान को इसका मतलब कोई हिदायत नहीं चाहिए, हिदायत चाहिए होती तो ये बात कहता। तो जो जो वाकई इस मामले में सीरियस है, जिसको केयर है, जो सीधा होना चाहता है, उसको ही अल्लाह सीधा करेगा, उसको खुद ही परवाह नहीं, तो अल्लाह ताला उसको किसी को जबरदस्ती हिदायत नहीं देता। इम्मा शाकिर हुआ इम्मा कफूरा, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम शुक्रगुजार हो या ना शुक्री करो। अल्लाह ने हिदायत और उसका गुमराही का रास्ता दोनों बता दिए। तो क्या हम समझते हैं कि हिदायत ये है कि मुझे पता चल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है? जी नहीं, ये नहीं हिदायत होती। बाज दफा लोगों को इल्म भी होता है मगर हिदायत फिर भी नहीं आती। हिदायत तो सीना खुल जाना है, सीना खुल जाए, इंसान गुनाह छोड़ दे, ये अल्लाह का फजल ही होता है। वरना इल्म तो बहुत सारे लोगों को, किसको नहीं इल्म है जन्नत का, किसको नहीं इल्म है जहन्नुम का, किसको नहीं इल्म है क्यामत के दिन का, हिदायत नहीं। तो ये अल्लाह की तरफ से आती है और ये अल्लाह का बड़ा फजल होता है। और अगर आप चाहेंगे तो जैसे मैंने आपको हदीस बताई है कि तुम अल्लाह की तरफ एक कदम चल के जाओ, अल्लाह 10 कदम तुम्हारी तरफ आता है, तुम चल के जाओगे वो दौड़ के आता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप अल्लाह की तरफ तो जाना चाहें वो आपकी तरफ ना आए, ये नहीं होगा। आप चल के देखें ना, वो आपसे दूर नहीं जाएगा, वो और आपके करीब आएगा, फिर आपके लिए अगला कदम आसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और जो केयर ही ना करे, जो सीरियस ही ना हो, जो ओके है, जो जैसे मैं चल रही हूँ आई एम फाइन विद दैट, मुझे बस मैं ठीक गलत रास्ते पे जा रही हूँ ना, आपको क्या, और मैं इसी के ऊपर चलना चाहती हूँ, नहीं चाहते तो ना सही। और हिदायत यहाँ पे आयत के बाद हिदायत की क्यों बात की गई? इसलिए कि आयत का बहुत ज्यादा ताल्लुक है हिदायत के साथ। जब इंसान निशानियों में गौर व फिक्र करता है ना, उसको हिदायत का रास्ता मिलता है, ये लीड करती है हिदायत की तरफ। आप गौर व फिक्र करें, आप आसमानों जमीन पे कायनात पे गौर व फिक्र करें, अपने जिस्म के अंदर जो निशानियां उन पे गौर व फिक्र करें, कुरान में गौर व फिक्र करें, आपको जो निशानियां मिलती हैं वो आपको हिदायत की तरफ लीड करेंगी। ठीक है। और जो गुमराह रहना चाहता है, जिसको अल्लाह भटका दे, जो नहीं आना चाहते तो अल्लाह ने उसको भटका दिया, तो फिर उसके कोई वली भी नहीं है और मुर्शिद भी नहीं। वली मतलब होता है गार्डियन, जैसे आप कहते हैं ना कि औरत का निकाह उसके वली के बगैर नहीं होता। वली कौन थे? जो उसके फायदे को गार्ड करता है, उसके इसके मफादात का रखवाला, जिसको आम हम अपनी जुबान में कह सकते हैं, आप समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो वली उसको कहते हैं। तो जिस जो गुमराह हो गया ना, उसका कोई भी वली नहीं। हजरत उमर ने बोला था ना, जब उहद थी तो उन्होंने अबू सुफियान ने कहा था कि हमारा तो मौला उज्जा है, अल्लाह तुम्हारा मौला है और तुम्हारा तो कोई मौला नहीं है। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया, अल्लाह मौला ना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, जिसको अल्लाह छोड़ दे उसका कोई मौला नहीं। और अल्लाह ताला की जिसका वली बनता है ना, ये नहीं है कि मतलब वो ग्रीन कलर का चोगा पहन के बैठ जाता है और वो खास किस्म की पगड़ी लगा लेता है, जी अल्लाह के वली हैं बहुत बड़े, नहीं, जिसके अंदर ईमान है, जिसमें तकवा है, वो अल्लाह का वली है। और मुर्शिद, मुर्शिद वो होता है जो गाइड होता है, रहनुमाई करता है, तो कहते हैं ना हमारा मुर्शिद है ये, तो उसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं। इसलिए कि जो अल्लाह ताला से गाइडेंस लेना बंद कर दे, उसको छोड़ दे, उसको कौन गाइड कर सकता है, उल्टी तरफ ही गाइड करेगा फिर। तो आप देख रहे हैं कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ हो जाता है तो वो कायनात की मशीनरी को भी उसकी फेवर में लगा देता है। और सोचें कि हर दिन इन इन 300 सालों का हर दिन एक मिरेकल है, मिरेकल कि जिसमें हर दिन सूरज ऐसे कर रहा है, हर दिन वो ऐसे कट के गुजर रहा है, जैसे ऐसे लगता है कि सूरज को भी पता है कि इनके ऊपर नहीं मैंने अपनी धूप डालनी, जैसे लगता है कि सूरज को भी पता है मैंने साइड से होके गुजरना, क्योंकि ये अल्लाह वाले सो रहे हैं। तो जब अल्लाह ने अपनी रहमत निछावर करनी हो ना, फला मुमसी का लहा, तो कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको पूछने वाला नहीं, वो मुख्तारे कुल है।